जी इसके तात्पर्य में एक जगह के एक श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि किस भगवान क्यों ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्य हम समोहम सर्वभूतेषु बोलते हैं पर उसलिए अगले सोते ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम जो सुनता है उसको ज्यादा देते हैं नहीं सुनता तो कम देते हैं उसको मार्क्स। टीचर सबके प्रति समान है जैसा तुमने लिखा वैसा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि तीन गुणों के अनुसार कर्म के अनुसार जैसे जैसे गुण मिले हैं वो गुण जैसा बढ़ता है वातावरण में वृद्धि होती है असुरों की वृद्धि होती है और सत्गुण जब बढ़ता है तो देवगणों की वृद्धि होती है वो जीतते हैं और कोई और हारता है और जब रजो और तमोगुण बढ़ता है तो उन लोगों का जीत होता है। शास्त्र में हम पढ़ते हैं कभी कभी इंद्र जाके बृहस्पति से पूछता है महाराज क्या करे वो आक्रमण कर रहा है पूरा ले लिया उसने आज हमारा सीटी ले लिया हम तो रास्ते पे आ गए। बोले क्या करे अभी समय उनके अनुकूल है चुपचाप बैठे रहो समय आएगा। तो हम देखते हैं प्रभुपाद बहुत सुंदर से लिखते यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्व मम तेज अंश संभवम। बोलते हैं जब भी हम देखते हैं हम अनुभव करते हैं भक्ति में भी हम अनुभव करते हैं कि एक व्यक्ति एक कार्य बहुत ही कठिन कार्य बड़ी आसानी से कर लेता है बड़ी आसानी से और दूसरा व्यक्ति एक सरल सा कार्य करने में पूरा ताकत डालता नहीं हो पाता उसे। चाहे वो शास्त्रों को कंठस्थ करना हो चाहे प्रसाद बनाना हो चाहे विग्रह की सेवा करनी हो मृदंग करताल हो गाना हो हम देखते कोई व्यक्ति कोई बिना कोई तकलीफ के कोई भी वाद्य दे दो फास्ट दो पांच मिनट के अंदर एक्सपर्ट बजा लेता है और दूसरा 20 साल से मारा ढप पर ढप पर ढप उसको समझता ही नहीं है क्या गधे जैसा संसार दावा बोल रहा हो तो दावानल एक ठीक 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 छिक छिक सिंपल बड़ी बेर को बताने क्यों नहीं आता पता नहीं समझता नहीं बजा रहा हूं और कुछ हाथ पहली बार आए और छिक 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 पूरा शुरू हो जाता। तो इसी तरह से हम देखते हैं गुणों में इस चीजों में क्यों यद्यत विभूति मत तब समझ लेना चाहिए जैसे घड़ा कितना बड़ा है उसके उसमें समझ में आता है कि उसमें हवा कितना है या ग्लास कितना बड़ा है कंटेनर कितना बड़ा है उसके अंदर उसका ज्यादा। इसी तरह से इन शक्तियों को और गुणों को देखकर समझा जा सकता है कि किसको कृपा ज्यादा मिली है और किसको कम मिला है। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन कृष्ण की शक्ति के बिना हम परिवर्तन नहीं कर सकते दूसरों के हृदय को। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को निमित्त मात्र भव सव्य साची तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व मयैव इते निहता पूर्वमेव तू निमित्त बन और तेरे द्वारा बहुत बड़ी बड़ी कार्य हो जाएंगे। अब भक्त जानता है ये भगवान की कृपा से हो रही है इसीलिए वो कभी अहंकार भी नहीं होता उसको समझता है भगवान की कृपा कर और नहीं और भगवान अगर ले लिए जैसा अर्जुन का शक्ति ले लिए तद्वै धनुष त इशव सरथो हयास्ते वही सब कुछ है पर जब ले लिए कुछ नहीं कर पाया अर्जुन वही गांडीव है वही रथ है वही अर्जुन है सब कुछ है पर कुछ नहीं बड़े बड़े शून्य हैं एक नंबर वहां से निकाल दिया उसके पीछे से सब शून्य हो गया। और दूसरी बात मतलब भगवान जिसको जिसको दे रहे हैं उसके उसके अनुसार मतलब उसके उसके कर्म और उसके उसके इच्छा और तीव्रता या इत्यादि देखकर उसको दे रहे हैं उसमें भेदभाव नहीं है किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला योग्यता के अनुसार। और दूसरी बात कहते हैं कि कृष्ण सबको भक्ति देने के लिए तैयार है, जिस प्रकार शिक्षक सबको ज्ञान देने के लिए तैयार है, उसी ने तो टीचर बना है, पूरा पूरा जो ज्ञान है मैं सबको देने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारी पात्रता क्या है, तुम उसको स्वीकार करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए थे, दर्शन दे रहे थे, प्रश्नोत्तर चल रहा था, तो 12 साल का एक लड़का वीरभद्र उसका नाम था, उसने पूछा, प्रभुपा आई हैव ए क्वेश्चन, प्रश्न है मेरा। यस, क्या है? हाउ कम यू आर सो मर्सीफुल टू तमाल? तमाल कृष्ण उस समय ब्रह्मचारी थे, वो बैठे हुए थे लंबे चौड़े ऐसे बैठे हुए, और ये 12 साल का छोटा लड़का बोलता, हाउ कम यू आर सो मर्सीफुल टू तमाल, तमाल को आपने खास कृपा कैसे दे दिया? तो सब हंसने लगे, तो प्रभुपा जी ने बोला, नो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सबको बांट रहा हूं, मैं तो वही ज्ञान सबको दे रहा हूं, पर उसने उसको स्वीकार किया है, उसने उसका लाभ लिया है, बड़ी गंभीरता से उसको लेके उसको पचाया है, उसके ऊपर कार्य किया है। वो सूरज सबके ऊपर उतना ही चमकता है, पानी पर हो, पहाड़ पर हो, या पक्षी पेड़ पर हो, या पृथ्वी पर हो, लोग पर हो, वो भेदभाव नहीं करता, सूरज सबको सूर्य की किरण देता है। पर अगर एक व्यक्ति कमरा बंद करके, खिड़की बंद करके, उस पर कांच के ऊपर काला पेपर लगा के अंदर बैठ के बोले मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, तो सूर्य क्या करे बेचारा, को तो बाहर चमक रहा है, बाहर निकलो यहां से। तो बोले भगवान की कृपा से वो तो बरसा रहे हैं सबको, पर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? महाभारत में एक प्रसंग आता है, धृतराष्ट्र कल रणभूमि, कल शुरू होने वाला है, कुरुक्षेत्र का रणभूमि शुरू होने वाला है, रात को 12 बजे धृतराष्ट्र उठ के बैठ जाता है और संजय को बुलाता है रात को, संजय आ जाओ। संजय आता है, बोलता है, क्या महाराज आपने इस समय बुलाया? बोले हां मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या होगा, क्या होगा कल, क्या होगा? किम कुरु होता संजय मामा का पांडवाश्चे, किम क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं मतलब लड़ रहे हैं महाराज, लड़ाई में जाके वहां खाना खाने के थोड़ी बैठेंगे, क्या होगा बताओ? तो संजय कहता है बताऊंगा, पर पहले कोई एक व्यक्ति को लाके खड़ा करो बगल में। बोले क्यों? बोले मैं सत्य इतना कड़वा होगा आप मुझे मार डालोगे जान से। तो स्मरण करते हैं, स्मरण करते ही व्यासदेव वहां आ जाते, व्यासदेव पूछते हैं आपने बुलाया मुझे? बोले हां, ये कह रहा है कोई चाहिए सामने खड़ा होना। बोले ठीक है। तो संजय साफ साफ कहता है कि महाराज सब नष्ट होने वाला है, आपके सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, करोड़ों करोड़ों संख्या में लोग मारे जाएंगे, 5 पांडव और 14 लोगों को छोड़ के कोई नहीं बचेगा। तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है संजय से, संजय तू भी व्यासदेव का शिष्य है, मैं भी व्यासदेव का शिष्य हूं, न केवल मैं शिष्य हूं, मैं तो व्यासदेव का पुत्र हूं, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई किया, दोनों ने एक ही शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की, पर ऐसे कैसे संजय कि तू सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता है, दूरदृष्टि वाला है, सब कुछ समझ सकता है, पहले से ही बता सकता है क्या होने वाला है, और मैं न केवल भौतिक रूप से अंधा पर समझ भी नहीं पाता हूं, क्यों ऐसा क्यों? तो संजय कहता है बोलूं महाराज? बोलो। सत्य बोलूं? अब बोलो महाराज। एक व्यक्ति का हृदय एक पात्र जैसे होता है, और ये ज्ञान कानों के द्वारा हृदय में जाकर उस पात्र भरता है। आपके पात्र में बड़े बड़े छेद हैं महाराज, बड़े बड़े छेद हैं। भक्तों से द्वेष करते हो आप, पांडवों से द्वेष के हजारों छेद है आपके पात्र में। पुत्र की आसक्ति में, मोह में आकर आप अंधे हो गए हो महाराज, देख नहीं पा रहे हो, ऐसे हजारों छेद हैं। तो जो भी सुनते हो दो दिन तक आपके हृदय में टिकता नहीं है, सब लीक हो जाता है बाहर। कृष्ण भी आके आपको कह के गए, हां हां बोले, फिर से दुर्योधन आके कहता है हां हां वो भी ठीक है। ये सत्य है महाराज, इस पात्र को पहले बंद करो आप, ये सारे जो छेद हैं उसे बंद करो, फिर जो सुनोगे टिकेगे वो। तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं नारद मुनि के पांचवें अध्याय में। नारद मुनि बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं भक्ति वेदांतों का संग किया, भक्ति वेदांत चले गए चतुर्मास के बाद, पर उनका दिया हुआ संदेश मेरे हृदय में बैठा था। हां, और नारद मुनि बताते हैं कि मेरे अंदर कुछ योग्यता थी। क्या योग्यता थी? मैं चंचल नहीं था, खेल कूद ज्यादा नहीं करता था, गंभीरता से सुनता था। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, बिना आत्मसंयम के, बिना बिना शिष्टाचार डिसिप्लिन और बिना आज्ञाकारी हुए, तीन चीज, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, आत्मसंयम, शिष्टाचार और आज्ञाकारी हुए बिना गुरु की आज्ञा को हम अपने हृदय में ठान, क्या बोलते हैं, बना के नहीं रख सकते, सब लीक हो जाएगा। तो ये तीन चीज जरूरी है, ये सब सील कर देता है, सारे छिद्रों को बंद कर देता है, आत्मसंयम और शिष्टाचार, शिष्य यानी शिष्टाचार, डिसिप्लिन, डिसाइपल मींस डिसिप्लिन, और तीसरा आज्ञाकारी हुए बिना। और बिना गुरु की आज्ञा पालन किए भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवत धाम नहीं जा सकते। तो हम देखते हैं वो पांच साल का बालक, क्योंकि उसके अंदर ये गुण थी, उसने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। आत्मसंयम क्यों चाहिए, क्या जरूरी थी आत्मसंयम की? क्योंकि गोस्वामी बने बिना कृष्ण दास नहीं बन सकते। कृष्ण दास और गोदास कैसे बनेगा? कृष्ण कह रहे ये करो और इंद्रिया कह रही ये करो। एक नौकर अगर दो प्रभु, दो लोगों मालिक की सेवा करता है और दोनों उसको दो दो साइड में खींच रहे, किसका सेवा कर पाएगा? तो गोस्वामी बने बिना कृष्णदास, इसीलिए उपदेशामृत में पहला श्लोक यही है, वाचो वेगम मन वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रूपस्थ एतान वेगान यो विषहेत, संयम करता है धीरः। तो संयम बहुत जरूरी है, संयम करेंगे, प्रयास करेंगे, कम से कम प्रयास, प्रामाणिक प्रयास, तो संयम करेंगे तो आज्ञा का पालन करना बड़ा आसान हो जाएगा। और इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए ही। साधना, साधना भक्ति मतलब डिसिप्लिन। कोई भी देखो आप, कोई भी फील्ड में देखो, स्पोर्ट्स में देखो या पढ़ाई में देखो, विद्यार्थियों को पूछो, कोई भी फील्ड में जो यशस्वी हुआ है, बिजनेस में देखो, कोई भी फील्ड में, गुंडागिरी करने वाले फील्ड में भी, वो भी अपने उस्ताद की बहुत अच्छी तरह से आज्ञाकारी सेवा किया है, कृपा दिया उसको, उसको सब सिखाया कैसा कैसा उठाना चाहिए, कब उठाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अलग अलग महाजन होते हैं अलग अलग लोगों के। तो कोई भी जगह में यशस्वी प्राप्त करना है तो एक डिसिप्लिन चाहिए। बिना डिसिप्लिन के कोई भी फील्ड में हम लोग यशस्वी नहीं हो सकते। जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। साधना के बिना साध्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कोई भी साध्य प्राप्त करना है तो साधना अच्छी होनी चाहिए। और फिर वो साधना कैसे पालन करे? आज्ञा का पालन करो। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियो आज्ञा आरना कोरिहो मने आशा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाए कि नहीं, मैं तो कृपा सबको दे रहा हूं, वही पुस्तक है, वही लेक्चर है, पर इस व्यक्ति ने उसको अच्छे तरह से धारण किया है, योग्यता के द्वारा धारण किया है, पात्रता के द्वारा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, पात्रता होनी चाहिए। पात्र होगी तो उसमें टिकेगा, अर्थात प्रगति होगा। और इसीलिए और एक तत्व बहुत अच्छे से समझाते हैं, बाहरी रूप से कौन भक्त है कौन अभक्त है कभी हम समझ नहीं पाएंगे। बाहरी रूप से हम बहुत मुश्किल है समझना कौन भक्त है कौन कितना पहुंचा हुआ है, और ना ही हमारा ये काम है ये कौन है कितना पहुंचा हुआ है। नहीं, हम इतना तो जान सकते हैं, क्यों? क्योंकि किस तरह से उसकी सेवा करें, इसीलिए जज करना जरूरी है। किस तरह से हम सेवक हैं तो सेवा करने के लिए किस तरह से करें यह जानना जरूरी है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, और उसकी जो संशय है पूर्ण रूप से तृप्त करते हैं कि भगवान समह प्रिय सुहृद है ही पूर्ण रूप से। कभी भी वो अपने परिस्थिति से बदलते, अच्युत हैं वो, चूकते नहीं है वो, अपनी समा समभाव रखने में प्रिय और सुहृद भाव में कभी उनका अभाव नहीं है। सिर्फ हमारी बुद्धि को, हमारी दृष्टिकोण जो है, हमारी बुद्धि जो है कम होने के कारण हम उनमें गलती देखते हैं। अगर रंगीन चश्मा पहने तो सब हमको दुनिया रंगीन दिखती है, पीलिया हो गया तो सब पीला पीला दिखता है, दुनिया में नहीं, हमारी तकलीफ है हमारा आंख, जो आंख इससे भरा हुआ है इन गुणों से उनको सब ऐसा दिखता है, ओ ये भेदभाव कर रहे हैं, या ऐसा है या ऐसा है, यहां तक कि भगवान भी ऐसे। और इस तत्व को समझाने के लिए ये पूरा 10 अध्याय की कहानी होती है, एक सब ऐसे रिलेटेड है, एक को समझने के लिए दूसरा बताया, दूसरा प्रश्न के दूसरा, और इस तरह से चेन बढ़ते बढ़ते श्रृंखला जो है, प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते बढ़ते ये पूरा सातवां स्कंद में 10 अध्याय जो है हिरण्यकशिपु का और इस तरह से शुरू हो जाता है। तो अब प्रश्न पूछ रहे महाराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न क्या है? अहो अद्यद्भुतम हेतद दुर्लभई एकांतिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः। युधिष्ठिर महाराज ये प्रसंग वो कहां जाता है ये बताने के लिए बोले, हे राजन तुम जो प्रश्न कर रहे हो यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के सामने नारद मुनि से किया था। ये परंपरा है। परंपरा मतलब क्या प्रभु जी? कैसा होता है, यही प्रश्न एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से किया था, उसने ऐसा उत्तर दिया, इस परंपरा। सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति, पर जब प्रश्न आता है तुरंत प्रीवियस अथॉरिटी महाजनो ये नगत सपंथा, तुरंत बोलते हैं यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किया। कब किया? जब राजसूय यज्ञ के दौरान युधिष्ठिर महाराज का राज्य अभिषेक हो रहा था, या उनको बैठाए थे, पूजा पाठ चल रहा, भगवान श्री कृष्ण को जब अग्र पूजा के लिए बैठाया गया, तब वहां शिशुपाल था, और शिशुपाल बताया गया है दमघोष सुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्। कलभाषणा मतलब बच्चा तुतलाता है ना, पप्पा तक ऐसा शुरू करता है, तब से वो गाली देना शुरू किया ईश कृष्ण को, पैदा होते ही पहला शब्द कृष्ण को सुंदर संस्कृत शब्दों के द्वारा बुरे वचन कहना, कलभाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंतवक्रश्च दुर्मति। ये दंतवक्र और ये शिशुपाल इतना द्वेष, रोम रोम में द्वेष भरा था कृष्ण के प्रति, पर ऐसा डांटने के बाद भी जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, उसकी आत्मा जाके भगवान में मिल गई। ऐसा कैसे हो गया? मैंने सुना है महाभागवतों से, महाजनों से, कि महाराज वेण वो भी ऐसे ही नास्तिक था, और ब्राह्मणों ने केवल हुंकार किया, मर गया हो। पर शिशुपाल तो इतना द्वेषी था, डायरेक्टली भगवान के सामने उल्टी सीधी बातें कह रहा था। एक एक जो गाली उसने उपयोग किया उसके लिए मृत्यु सजा दे सकते, ऐसा ऐसे कटु शब्द कह रहा था वो, फिर भी उसकी आत्मा भगवान में चली गई। ऐसे कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर् दीपार्चिरिव वायुना। ब्रूहो अति अद्भुततमं भगवान तत्र कारण। बोले प्रभु, जिस प्रकार हवा आने से दीप का जो क्या बोलते हैं, फ्लेम, ज्योत बहुत फड़फड़ाता है, ऐसा मेरी बुद्धि फड़फड़ा रही है संशय के कारण कि महाराज वेण को हुंकार करके मार दिया, वो मर गया, पर शिशुपाल का आत्मा सीधा भगवान में प्रवेश किया, भगवान के शरीर में, ऐसे कैसे? प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर से बात लिखते हैं। बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न एक गुरु के सामने, अधिकृत व्यक्ति के सामने रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न का उत्तर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। तत्वदर्शिनः परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास रखो तो ही वो समझा सकता है, जो तत्वतः जानता है। एवं योवेति तत्वतः, केवल वैसा ही व्यक्ति आपको ये उत्तर दे सकता है, नहीं तो सारे प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण रूप से संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि के लिए कोई दे नहीं सकता। तो पूछते हैं, और तब बहुत अच्छे तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये शब्द सुनकर युधिष्ठिर महाराज के, नारद तुरंत बोलने लगे, कहने लगे कि सुनो हे राजन, एक अच्छी बात कहते हैं नारद मुनि। कहते हैं देखो, ये कौन थे ये लोग, शिशुपाल और दंतवक्र? जो तीन गुणों के बंध में आ जाता है, बंधन में आ जाता है, वो इस तरह से भेदभाव करता है, देखता है। और कहते हैं कि द्वेष से जितना मन एक व्यक्ति में रम जाता है, भक्ति में उतना नहीं रमता। यथा वैरानुबंधेन, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तस् यात् न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मतिः। बोलते हैं कि द्वंद्व जो है, ये बद्ध जीव जिसका भी शरीर है इसमें द्वंद्व है, सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान। तो क्योंकि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, वो द्वंद्वों से परे हैं, तो भक्तों की प्रार्थना और जो अभक्तों का डांट दोनों समान है भगवान के लिए। कोई तीर चलाए और कोई फूल फेंके, दोनों बराबर है भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है और तीन गुणों से परे हैं वो। हमारे लिए जो तीर चलाए उसको जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं हम लोग, फूल फेंका तो प्रेम से गले लगाएंगे, तीर चलाए तो गला काट देंगे। तो भगवान का ऐसा नहीं है, बल्कि उनका किसी को वध करना और किसी को वर देना दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ये जो व्यक्ति तत्वतः समझ गया तब भगवान का सही में वो गुणगान समझेगा, जानेगा वो। तो भक्तों की प्रार्थना और द्वेष व्यक्ति का जो डांट है दोनों भगवान के लिए बराबर है। ये कहकर वो कहते हैं तस्माद वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहाद कामेन वा युज्यात कथंचित नेक्षते पृथक। बोलते हैं अगर एक बद्ध जीव किसी न किसी तरह से अपना मन भगवान पे लगाता है, द्वेष से, भक्ति से, डर से, प्रेम से, काम वासना से, किसी तरह से, उसका परिणाम एक ही होता है, उसका उद्धार होता है। क्योंकि भगवान अपने तीन गुणों से परे होने के कारण इस द्वेष से या मैत्री से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ असर नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी तुरंत तात्पर्य में लिखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आज से मैं द्वेष करना शुरू करूंगा, जानबूझ के हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम जैसे हजार गाली देना शुरू करूंगा भगवान को उठ के सुबह सुबह। बोले नहीं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर एक जगह कहते हैं कि शिशुपाल और दंतवक्र को छोड़ के और किसी ने अगर इस तरह से द्वेष किया तो निश्चित वो नरक में जाएगा, क्योंकि भगवान अगर मारेंगे तो ही उसका उद्धार होगा। इतना द्वेष करना कि भगवान को उतर के आना पड़ेगा मारने के लिए, कोई और मार दिया तो खयम खत्म। और उतना द्वेष तो हम नहीं कर सकते शिशुपाल जैसा, पैदा होते ही शुरू किए काम ने, बोले उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो फिर नारद मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं? नारद मुनि इसलिए कह रहे हैं ये उनकी नम्रता है। जगाई माधाई होई ते मुई से लघिष्ठ पुरी शेर अपिष्ठ पुरी शेर कीट होई ते मुई से लघिष्ठ। जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं जगाई माधाई से भी पापी हूं और एक विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी मैं नीच हूं, इसका मतलब नहीं है कि सचमुच में वो ऐसे, ये उनकी भावना है। तो भक्त की भावना है कि मैं इस तरह से मैं बड़ा, अरे काश जिस प्रकार शिशुपाल भगवान का स्मरण करता था काश मैं भक्ति से ऐसा कर सकता, जिस प्रकार कंस भय के कारण भगवान का स्मरण करता था काश मैं वैसे भगवान का स्मरण। भागवत में और दूसरे जगह में पुराणों में वर्णन है 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करता था भय से कंस, पर्दा हिलता था तो बोलता कृष्ण आया लगता था, छिपा हुआ देखो पर्दा को हटाओ, दो वाटी लाके रखा तो कृष्ण बलराम दिखते थे उसको, झांक के देखता तो बोल कृष्ण और चेहरा बलराम का चेहरा दिखता था। 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस, 24 घंटे कृष्ण भावना भावित, पर प्रतिकूल, प्रतिकूल हमारे लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, पर अनुभव किया है हमने, आप जिस व्यक्ति से द्वेष करते हैं उसका स्मरण कैसा गहराई तक हृदय में जाता है सोचो। आप भगवान का स्मरण करते हैं ठीक है, सिर्फ वो माला हिलता है हृदय में स्पर्श नहीं होता, पर जिसे द्वेष करते हैं या कामी व्यक्ति या भयभीत व्यक्ति जितना अपने शत्रु का स्मरण करता है वो तीव्रता भक्त भक्ति में भगवान का उतनी तीव्रता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति उतनी तीव्र नहीं है। द्वेष बड़ा तीव्र है, क्रोध बड़ा तीव्र है, भय बड़ा तीव्र है। हम बद्ध जीव हैं, इसका अनुभव ज्यादा हुआ है। इस भावना से नारद मुनि कहते हैं काश जितना वो स्मरण करता था तीव्रता से 24 घंटे, उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। वो जहां भी देखता था वो कृष्ण दिखता था, उसको कृष्ण ही दिखते थे। ये हम साधारण इस पे अनुभव करते हैं। अगर आप किसी से द्वेष करते हो और उसका एक चेहरा एक प्रकार का है और आप यहां से कि दूसरे गांव जाओ और वहां भी अगर वैसे चेहरा वाला दिख गया तो उसे भी द्वेष होने लगता है। पीछे से ऐसा थोड़ा भी दिख गया वो तो बोलते तू सामने मत आ। बोले सामने मैं क्यों? बोले तू सामने मत आ, बस भाग यहां से। बोले मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तू दिखता क्यों ऐसा? उसके जैसा बोलना कोई है तो द्वेष आ जाता है। या कोई डरा हुआ आदमी, हाँ सांप से डरा हुआ कुछ तो, या चूहा आ गया डर गया, बातचीत कर रहा है कुछ तो लग गया, तो फिर से रस्सी भी लग गया, कुछ भी लग गया, माइक्रोफोन भी लग गया, क्या हुआ? नहीं पता नहीं, वो देखा ना उधर, उधर चूहा देख रहा तो इधर भी टच हो गया, लगता है कि कुछ तो हो गया। सब जगह वही लगता है, अभी भी शायद चूहा आ रहा है, खुटखुट खुटखुट आवाज आता है, शायद चूहा है, शायद चूहा, शायद चूहा। एक छोटा सा दिन में हम लोग जीवन में अनुभव करते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस ये हृदय में, हृदय को ज्यादा मतलब कैप्चर कर लेता है पूरा, पर उतना ही भगवान का प्रेम हमें हृदय को पूरा स्पर्श नहीं करता। वो तो हरे कृष्णा पर मन कहीं और, सालों से कर रहे हैं फिर भी हृदय को स्पर्श नहीं करता है वो। इसीलिए चेतोदर्पण मार्जनम नहीं होता। झाड़ू लगा रहे हैं घर के बाहर, अंदर खाली नहीं, दरवाजा खोला ही नहीं है। ये हमारी समस्या है। इस भावना से नारद मुनि कहते हैं कि हां, और फिर कहते हैं कामाद द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। काम वासना से, द्वेष से, भय से, स्नेह से या भक्ति से, पांच प्रकार बताए, इसमें से कोई भी एक आवेश्य, आवेश में जाकर पूर्ण रूप से तद अघम हित्वा पाप कार्य को छोड़कर पूरा स्मरण करते रहे इस तरह से, तो निश्चित रूप से तद गतिम गताहा वही गति को प्राप्त कर सकते हैं। और वे एक उदाहरण देते हैं, भृंग एक जो मक्खी होती है मधुमक्खी, वो कभी कभी एक कीड़े को पकड़ लेती है, कीड़े को पकड़ के एक पेड़ में छेद बनाकर उसको अंदर ठूस के ऐसा खड़े होते उसके ऊपर, छोड़ते नहीं उसको, जैसे कोई छोटे कमरे में डाल के दरवाजा के पास खड़ा हो जाए, बाहर नहीं निकले, तो डर के मारे वो कीड़ा उस मधुमक्खी को देख देख के देख देख के उसका स्वरूप भी उससे जैसा हो जाता है। नारद मुनि उसका उदाहरण देते हैं, भय के कारण वही स्मरण करते करते उसका रूप भी ऐसे ही हो जाता है। तो फिर जो व्यक्ति भगवान का ऐसा स्मरण करे तो क्यों ना उसको भगवान का स्वरूप मिल जाए। सारूप्य मुक्ति, भगवान नहीं सारूप्य। फिर उदाहरण देते हैं, गोप्या कामाद भयाद कमसो द्वेषाद चैद्यादयो नृपः संबंधात वृष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। पांचों का उदाहरण देते हैं कि गोप्यः कामात, काम वासना से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभुपाद जी समझाते हैं ये काम हमारे काम वासना जैसा नहीं है, लगता है ऐसा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं गोपियों का काम वासना काम नहीं था, वो प्रेम था, शुद्ध प्रेम। हमारा काम वासना और गोपियों का दोनों एक ही है, काम है पर वो सोना है और ये लोहा है, दोनों धातु हैं पर उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भयाद कम सह, भय के द्वारा कंस जितना आवेश होकर भगवान का स्मरण करता था, द्वेषाद चैद्यादयो नृपाः, शिशुपाल जैसे द्वेष के द्वारा, संबंधात वृष्णयः, वृष्णि वंश के लोग, कुंती महारानी हो या द्वारका के, अपने संबंध के द्वारा उद्धव कृष्ण का जिस प्रकार स्मरण करते थे, स्नेहाद यूयम, हे पांडवों आप स्नेह के द्वारा कृष्ण का जैसा स्मरण करते हो, भक्त्या वयम, और जिस प्रकार हम भक्ति के द्वारा करते हैं ऐसा स्मरण करे तो हमें कृपा मिले, मतलब पुट योर हार्ट इंटू व्हाट यू आर डूइंग। हमको क्यों उसकी कृपा नहीं मिलती इतने जप करने के बाद भी, क्योंकि हमारा हृदय जप में नहीं डालते हम। भगवान का स्मरण ऊपर ऊपर से, जिह्वा हिल रहा है, हृदय में स्पर्श नहीं हो रहा है। पर जब किसी से द्वेष करते हो, देखो हृदय जलता है हमारा, काम वासना से हृदय, हाथ रख के देखो टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? हृदय से अनुभव कर रहे हैं सब ये भावनाएं, पर वही प्रेम भगवान के प्रति नहीं है। प्रेम ऊपर से ऊपर से आया, दर्शन हो रहा है, बन कहीं और है। वही नारद मुनि कहते हैं काश ये शत्रुओं का भगवान के प्रति द्वेष से जो स्मरण था, काश थोड़ा उसका एक बूंद भक्ति के द्वारा हमारे हृदय में आ जाए, वाह जीवन सफल हो जाए हमारा। और फिर कहते हैं कतमोपि न वेन स्याद पंचानाम पुरुषम प्रति अतः केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत। कतमोपि न वेन स्याद, बोले तुम कैसा भी स्मरण करो पर स्मरण करो बाबा। बोले वेणा महाराज, वेन जैसा मत बनो। क्यों? महाराज वेन नास्तिक था, उसको विश्वास ही नहीं था कि भगवान है, तो स्वरूप कैसा स्मरण करेगा वो। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कैसे व्यक्ति लोग हैं जो कृष्ण का स्वरूप का स्मरण नहीं करते। असुर अच्छे हैं, कम से कम अच्छे मतलब अच्छे नहीं है पर इस तुलना में कम से कम अच्छे, क्योंकि भगवान का स्मरण करते थे। उसको मारना ही, उसको पकड़ के मारना ही है, मारना है वो कृष्ण को, मारना है पकड़ के। तो कृष्ण का स्वरूप को ध्यान करते वो लोग 24 घंटे वही सोचते रहते हैं, दिखना चाहिए, कहीं भी दिखना चाहिए। जैसे गोपियों को कुछ भी काला दिखा तो लगता था ना, वृक्ष को देखा तो काला लगा, बादल देखा तो लगता था कि हाँ, या मोर पंख देखा तो कृष्ण का स्मरण होता था। इस तरह से भय के द्वारा कंस को, द्वेष के द्वारा शिशुपाल को, जहां भी देखा कृष्ण दिखते थे, कृष्ण ही नजर आते थे। कम से कम कृष्ण तो स्मरण होता था। बोले नास्तिक नहीं होना चाहिए बस, वो दुर्भाग्यशाली है नास्तिक जिसको भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं है। तो जो मायावादी लोग हैं, जो समझते हैं कि भगवान का रूप काल्पनिक है, वो दुर्भाग्यशाली हैं। जो नास्तिक लोग हैं, जिनको विश्वास ही नहीं कि भगवान का स्वरूप है, कि भगवान हैं, वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। और बहुत सारे राजनीतिक और तत्वदर्शी जो गीता को पढ़कर गीता में से ही भगवान को मार के निकाल देते। प्रभुपाद जी एक बार राष्ट्रीय गीता सम्मेलन हुआ था, अटेंड करने उनको भी आमंत्रित किए थे, गए थे वो। उन्होंने देखा बहुत बड़ा स्टेज है और काफी लोग आए हुए हैं, और स्टेज के ऊपर टेबल लगाया हुआ है, कुर्सी लगाया हुआ है, और ज्योत एक लगाई हुई है, लैंप लगाया हुआ है, कृष्ण का फोटो भी नहीं है, एक छोटा सा भी कृष्ण का फोटो नहीं रखा है। तो प्रभुपाद ने सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर को बुलाया और बोले क्या ये गीता सम्मेलन, राष्ट्रीय गीता सम्मेलन? अरे गीता किसने बोला? उस व्यक्ति का फोटो तो रखो, गांधी जयंती मना रहे, गांधी का फोटो ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? कम से कम एक छोटा फोटो, पुराना फोटो, सड़ा हुआ फोटो कुछ तो रखते हैं गांधी जयंती में। तो तुम कृष्ण की चर्चा कर रहे हो, राष्ट्रीय सम्मेलन है, सिर्फ ज्योत जलाए हो, इसका मतलब क्या है? तुम विश्वास ही नहीं करते कृष्ण है, पर गीता चाहिए उनका। क्यों? क्योंकि किसी के कंधे पे बंदूक रख के मारना है ना, हम बोलेंगे मेरा सिद्धांत सुनो, कौन सुनेगा? गीता सबको अच्छा लगता है तो गीता के ऊपर रख के अपना शास्त्र सुनाना, तो गीता में ही भगवान को मार देना, गीता के श्लोक में कहना कृष्ण मतलब काला, काला मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब है ही नहीं, कुछ भी ऐसा डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे व्यक्ति ने ऐसा लिखा था। प्रभुपाद जी सीधे सीधे बोलते हैं, उनको मुंह पे लेख लिखे थे वो, गीता के ऊपर प्रवचन करने वाले कृष्ण का स्वरूप है विश्वास नहीं है। बोले ऐसे कैसे, उनको विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण ने बोला ये। तो बहुत सारे अलग अलग गलत फहमियां कृष्ण के प्रति है, ये बड़ा दुर्भाग्य है अगर कृष्ण के स्वरूप को ही नहीं माने तो। नहीं तो उससे अच्छा है कोई द्वेषी, कम से कम भगवान को मानता तो है, मालूम है कि स्वरूप है उनका। और फिर कहते हैं कि क्यों हुआ मालूम, सचमुच में सच बताऊं, पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापाद पतह युगौ पदच्युतौ। बोले ये दोनों जो थे दंतवक्र और शिशुपाल, ये कोई मामूली नहीं थे, पार्षद प्रवरौ विष्णु, अरे साक्षात विष्णु के पार्षद थे ये लोग, जय और विजय नाम के। और विप्रशापाद पदच्युतौ, ब्राह्मणों के शाप से उनका पतन हुआ। क्या युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या ब्राह्मणों के शाप से वैकुंठ वासियों का पतन हुआ? ये मुझे विश्वास नहीं है। अगले श्लोक है वो, अगला अध्याय का शुरुआत है। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, कीदृश कस्यवा शापो हरिदासाभिवर्षण अश्रद्धेय इवा भाति हरेरेकांति नाम भव। बोले ऐसे कैसे कि वैकुंठ में वैकुंठ के वासियों को कोई शाप दे सकता है वैकुंठ जाकर, और शाप देने वहां गया कोई, और वहां जाने के बाद गुस्से होकर शाप, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वैकुंठ में तो सब लोग शांत स्वभाव के होते हैं, तो ऐसे कौन व्यक्ति है जो वहां गए और ऐसे लोगों को ऐसा शाप? कृपया मुझे विस्तृत रूप से बताइए, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वैकुंठ से किसी का पतन हो सकता है। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में अच्छी तरह समझाते हैं, वैकुंठ से कभी किसी का पतन नहीं, यद गत्वा अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान ने आश्वासन दिया है जो एक बार वैकुंठ पहुंचा वापस नहीं आएगा, और आया तो केवल भगवान की सेवा के लिए आता है। तो इस तरह से वो आने वाले अध्यायों में बहुत सुंदर से इस तरह से चलता है, फिर आता है बताते हैं ये जय विजय बन ये तीन स्वरूप लेके आए। और तब प्रश्न आता है, इतना द्वेष भगवान से, इतना द्वेष क्यों? अच्छा पुत्र प्रहलाद इससे द्वेष क्यों? तब ये कथा आगे बढ़ती है, और कल हम सुबह आगे बढ़ाएंगे और शाम को भी आगे बढ़ाएंगे। कल नरसिंह चतुर्दशी है, हो सके तो भागवत में भी आइए सुबह, और शाम को भी वैसे भी फास्टिंग है अगर आप उसका पालन कर रहे हो तो, जल सूर्य के वापस तुरंत जा सकते हो, ऑफिस में जाना भी। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की। अभी 10 मिनट कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात सबके लिए प्रसाद है।